प्लेस बहुत ही दूर है, हम तो बोल नहीं सकते।
मैं उसमें तो जो सिर्फ ऑडियो में नहीं होता है, वीडियो में और यूस्ट्रीम में
हर चीज़ में होना चाहिए किसी तरीके, कोई भी तरीके से होना चाहिए।
बोल देते जी, तार डेट क्या है?
बोलो क्या
है जी, तार डेट क्या है?
27
मैं बोल देती हूँ, 22nd June. It is 22nd June and we are recording in New Jersey, America.
इधर ठीक है,
मेरे पास तो ठीक नहीं है।
फिर से चेक करा दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास तो ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम, रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस वक्त मैं एक हदीस को लेकर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यह हदीस मुसनद अहमद में आई है, उसके अल्फाज यह हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु बदरिन वला बबर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलमतल इस्लाम। ज़मीन पर कोई छोटा घर या बड़ा घर नहीं बचेगा मगर अल्लाह ताला उसके अंदर इस्लाम का कलमा दाखिल कर देगा। मैं कहता हूँ कि इस्लाम कलमा से मुराद है कुरान, यानी अल्लाह की किताब हर घर में दाखिल हो जाएगी। यह बात कही गई थी 7वीं सदी ईस्वी के फर्स्ट क्वार्टर में। अब हम 21वीं सेंचुरी में हैं। आज गौर किया जाए तो वो तमाम असबाब इकट्ठा हो चुके हैं जबकि इत्फाल कलमा का ये वाकया, इत्फाल कलमा की पेश हुई वाकया बने। एक बच्चे से मैंने कही कि हम हटा दिए बच्चे को, ठीक का तरीका है? कोई तरीका नहीं है, बच्चों को हटाए यहाँ से, मैं चला जाऊँ।
चले गए बच्चे
देखिए ये हदीस जो है इससे पहले मैं कुछ और बातें अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो कुछ रोल मुकद्दर थे आदम से लेकर क़यामत तक के लिए। मैं समझता हूं कि ये थाले कलमा ये आखिरी रोल है, इसके बाद क़यामत है। मैं समझता हूं कि पहला रोल जो था वो हज़रत आदम का था, उन्होंने ये रोल अदा किया कि इस जमीन पर पहला इंसान आबाद हो और इस जमीन पर इंसान की तारीफ शुरू हो। ये बहुत ही बड़ा, आप जानते हैं कि ये दुनिया जो है 15 बिलियन साल से है साइंस के मुताबिक, 15 बिलियन से। लेकिन यहां पर क्या था, सितारे थे, सियारे थे, सूरज था, चांद था, लेकिन इंसानी जिंदगी की तारीख नहीं शुरू हुई थी। ये रोल हजरत आदम के लिए मुकद्दर था और उनके जरिए से इस जमीन पर इंसान की तारीख शुरू हुई। इस तरह से कई रोल अदा हुई है। मैं समझता हूं कि इसके बाद एक बड़ा रोल था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। हजरत नूह के जमाने में इंसान की आबादी एक बहुत ही महदूद रकम में होती थी, जो कहते हैं मेसोपोटामिया, दज्जा और फरात के दरमियान। हजरत नूह के बाद जो तूफान आया उसके बाद ये वाकया पेश आया कि इंसान सारी दुनिया में फैल जाए। एक महदूद रकम में जो लोग आबाद हुआ करते थे वो अमेरिका को छोड़कर सारी दुनिया में फैल गए। इसके बाद कई रोल हैं। मिसाल के तौर पर देखिए हज़रत इब्राहिम का रोल था। हज़रत इब्राहिम का रोल ये था कि वो अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीबी हाजरा को उन्होंने अरब में बसाया, डिजर्ट में। ये एक बहुत बड़ा रोल था क्योंकि उनके जरिए से एक नई जनरेशन बनी जिनको हम कहते हैं बनू इस्माइल। ये बिल्कुल नए किस्म के लोग थे जिनको एक ओरिएंटलिस्ट ने अनेशन ऑफ हीरोज कहा है। इसी में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसी में असहाब रसूल पैदा हुए। तो इन लोगों ने यानी असहाब रसूल ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, हिस्ट्री में एक नया प्रोसेस जारी किया, शिर्क का खात्मा और तौहीद का आवाज, दौरे तौहीद का आवाज। उसी कल्मिनेशन था बाद को होने वाले सारे बड़े बड़े वाकया। तो ये बहुत बड़ा वाकया था पूरी हिस्ट्री में। पिछले जमाने में लोग शिर्क की में पड़े रहे, सितारों और सियारों पर परस्तिश करते रहे, जिसका इशारा किया है कुरान के इसमें रब नहु नाजर ने कसीरा। तो असहाब इकराम ने तारीख में एक नया इंकलाब पैदा किया कि शिर्क का दबदबा खत्म हुआ और तौहीद की बुनियाद पर एक नए प्रोसेस का आगाज हुआ। ये कल्मिनेशन था ये सारी तरक्कियां। इसको मैं अपनी किताब इस्लाम द मॉडर्न एज में लिखा है। फिर उसके बाद देखिए एक रोल है मुस्लिम एम्पायर का। देखिए इस्लाम का मकसद हुकूमत कायम करना नहीं है, ये मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो मुस्लिम एम्पायर कायम हुआ उसका रोल क्या था, कुरान का तहफ्फुज, इस्लाम का तहफ्फुज। देखिए इस्लाम से पहले बहुत से पैगंबर आए, سنبار سرنا رسرنا کترا, لیکن کسی بھی پیغمبر کی تعلیم محفوظ نہیں رہی, محفوظ نہیں رہی کسی بھی پیغمبر کی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ ایک طاقتور مددگار کھڑا ہو, اس کیونکہ آخری نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. تو آپ کے لائے ہوئی کتاب آپ کا اسوہ, آپ کے فرمودات, یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں, پوری طرح سے محفوظ ہو جائیں. اس کے لیے ایک بیکنگ چاہیے تھی, ایک تائید چاہیے تھی, پولیٹیکل تائید, طاقتور تائید. تو اگر یہ مسلم امپائر نہ بنا ہوتا تو دنیا اتنی ظالم تھی, اتنی ظالم تھی جس طرح پچھلے پیغمبروں کے کتاب کو اس نے یا تو مٹا دیا یا بدل ڈالا, شاید ایسی انجام اس کا بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت پر ایک طاقتور حکومت قائم کی. تو حکومت خود کوئی مقصود نہیں ہے کہ حکومت قائم کرنا نشانہ نہیں ہے, لیکن تائید کے طور پر یہ قائم ہوئی, اور واقعی یہ اسی کی وجہ سے اسلام مکمل طور پر محفوظ ہو گیا. دیکھیے یہ جو رول میں کہہ رہا ہوں کہ کئی رول, اس میں حدیث سے ثابت ہے کہ اس میں سیکولر لوگوں کا بھی رول ہوگا, صرف مسلم کا نہیں. بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ لیعیدہ الدین پر رجل الفاجر, یہاں فاجر سے براد میں سیکولر ہے, سیکولر لوگوں کا بھی ایک رول اس میں ہے. وہ زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کی لوگوں نے پیدا کی سیکولر لوگوں نے, یہ ساری جو چیزیں اس زمانے میں دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں اسلامی دعوت کے لیے, جیسے کمیونیکیشن وغیرہ, وہ سب انہوں نے پیدا کی سیکولر لوگوں نے. تو سیکولر لوگوں کی بھی تائید اس مذہب کے ساتھ, اس اسلام کے ساتھ شامل ہے. اس طرح سے حضرت آدم سے لے کر کے اب تک مختلف رول مقدر تھے جو ادا ہوتے رہے, ادا ہوتے رہے, ادا ہوتے رہے. اب بظاہر قرائن یہ بتاتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے, کم از کم سائنس کا جو پریڈکشن ہے, سائنس کا جو اسسمنٹ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے. تمام سائنٹسٹ دنیا کے اکٹھا ہوئے, کئی کانفرنسیں ہوئیں اور سب نے اپنی اسٹڈی پیش کی, تو سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق تو قیامت بہت قریب ہے. یہاں تک کہ دیکھیے وقت کا جو بہت بڑا سائنسداں ہے, برٹش سائنسداں, اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب زمین پر انسان کے لیے رہنے کا موقع ختم ہو چکا ہے, اب ہمیں اسپیس کالونی بنانا چاہیے تاکہ ہم خلا میں جا کر رہ سکیں. تو بہرحال ظاہر ایسا لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے. تو قیامت سے پہلے جو ایک رول تھا اتخاذ کلمہ کا, اب وہی باقی ہے, وہی رول. اس میں دیکھیے اتخاذ کلمہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, اتنی بڑی زمین ہے, اتنا بڑا انسان ہے, 7 بلین انسان رہتے ہیں دنیا میں, سب لوگوں پر قرآن پہنچ جائے, اللہ کا پیغام پہنچ جائے, اسلام کا پیغام پہنچ جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کچھ پری ریکوئزٹس چاہیے, پری ریکوئزٹس تب پہنچے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مثلا دیکھیے اس کے لیے چاہیے کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ چکا ہو. آج قرآن چھپ چھپ کر کے بلین بلین اس کی کاپیاں ہر جگہ موجود ہیں, جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا قرآن, تو ناممکن تھا کتاب لکھتے ہاتھ سے لکھے کہ ہر گھر میں پہنچائیں آپ. تو ایک شرط یہ تھی کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آئے. اس کے بعد دیکھیے کمیونیکیشن چاہیے, کتاب چھپ چکی ہو, قرآن چھپ کر موجود بھی ہو, तब जो कम्युनिकेशन नहीं तो आप कैसे पहुंचाएंगे? तो कम्युनिकेशन का जमाना दरकार था। इस जमाने में देखिए कम्युनिकेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर वजूद में आ चुका। किसी भी एक स्पॉट पर रह करके आप सारी दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकते हैं। उसके बाद देखिए और भी बहुत चीज आए, मिसाल तौर पर रिलीजियस फ्रीडम। कदीम जमाने में देखिए मजहबी आजादी नहीं थी, ये मुमकिन नहीं था कि आप यहां से वहां अपने दीन के पैगाम को लेकर जाए। हर जगह रुकावटें थी, हर जगह रुकावटें थी, हर जगह रुकावटें थी, हर जगह पाबंदियां थी। आज जो देख रहे हैं आप दुनिया मजहबी आजादी, ये सिर्फ चंद सौ साल के अंदर आई है दुनिया में, इससे पहले कि वजूद नहीं था। इससे पहले खुद कुरान में देखिए सूरह अल-बुरूज में पढ़िए आप कि आग में डाल दिया गया कुछ लोगों को, कुरान बताता है। और क्या था, वमा नकम मिनु बिल्ला यू मिनु बिल्ला अजीजुल हमीद, सिर्फ ये कहना कि अल्लाह एक है, इस पर उनको आग में डाल दिया गया। एक दौर था हजारों साल तक चलता रहा। तो मजहबी आजादी रिलीजियस फ्रीडम भी लाजमन जरूरी थी, उसके बगैर आप कैसे यहां से वहां पहुंचाएंगे? हर जगह हर घर में हर जगह रुकावट होगी, हर जगह मार पीट आ जाएगा, हर जगह भगाया जाएगा लोगों को। तो यह हुआ। इसी तरह देखिए एक और चीज जरूरी है, इसको मैं कहूंगा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि लोग जानना चाहें, लोग पढ़ना चाहें। तो इस दौर में साइंस के असर से स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पैदा हुई जो कभी पहले थी नहीं। चीजों को जानने की कोशिश करना, चीजों को दरियाफ्त करने की कोशिश करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बिल्कुल एक नया फिनोमेना है जो पहले तारीख में कभी मौजूद नहीं था। यह भी मौजूद हो गया स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आदमी जानना चाहता है हर चीज को। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का एप्लीकेशन सिर्फ फिजिकल चीजों में नहीं हुआ, और चीजों में भी हुआ, इंक्लूडिंग रिलीजन। कि इंसान जानना चाहता है इस मजहब में क्या है, उस मजहब में क्या है, यह भी एक दौर का तकाजा है, यह भी एक दौर का तकाजा है। ऐसे देखिए यह भी जरूरी है कि कुरान एक नॉन बुक लोगों के लिए हो, नॉन बुक एक ऐसी किताब आप लोगों के घर में डाल दें। मिसलन आप एक चलावें कैंपेन डोर टू डोर कुरान ड्राफ फर्ज कीजिए, हर घर में कुरान का छपा हुआ नुस्खा डाल दें, डोर टू डोर कुरान ड्राफ। लेकिन आपने डाल दिया, उसके बाद साहिब खान ने उसको उठाकर देखा तो उसके लिए अननोन किताब थी, तो पढ़े करें उसको लिटरेचर में डाल देगा वो। कभी पढ़े करें उसको। लेकिन कुरान जो है 1400 साल की तारीख में एक मालूम बुक बन चुका है, एस्टेब्लिश्ड बुक बन चुका है, ऑथेंटिक जरिया बन चुका है खुदा की हिदायत को जानने का। फिर आजकल देखिए सारी दुनिया में इस्लाम के नाम सरगर्मियां जारी हैं, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में नहीं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में। आपके अमेरिका में 1000 इस्लामिक सेंटर हैं, हर दिन यहाँ पर कुछ न कुछ कॉन्फ्रेंस होती है इस्लाम के नाम पर। हम भी यहाँ इस्लाम के नाम पर इकट्ठा भी हैं बात करने के लिए। तो इस्लाम का चर्चा, कुरान का चर्चा, वर्ड ऑफ गॉड का चर्चा हर तरफ फैला हुआ है। अब अगर आप किसी को कुरान देते हैं तो उसके लिए एक मालूम तोहफा होता है, वेल नोन गिफ्ट। जैसे हमारे साथी देखिए, हम लोग कुरान के डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रहे हैं यूनिवर्सल लेवल पर, हर जगह। हर जगह की रिपोर्ट क्या है, जब भी हमारे साथी किसी को कुरान देते हैं तो फौरन बड़े शौक से लेता वो, अच्छा ये कुरान है, मैं इसको तो पढ़ना चाहता था। हर जगह अभी हम आए दिल्ली से अमेरिका, तो जहाज में हमारे साथियों ने مسافروں کو دیا, پائلٹ کو دیا, سب نے بڑے شوق سے لیا, ایئرپورٹ پہ لیا. ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ قرآن ہے, اس کو تو ہم پڑھنا چاہتے تھے. تو دیکھیے قرآن کا ایک ویل نون بک بن جانا بھی بہت ضروری تھا. ورنہ کوئی پڑھتا کیسے؟ فرض کی ایک کتاب کا نام المفصل ہو تو وہ دیکھا کہ المفصل یہ کیا چیز ہے, تو کس لیے پڑھے گا وہ اس کو؟ تو قرآن کہتے ہیں آتھنٹسٹی اسٹیبلش ہو گئی, قرآن ایک ویل نون کتاب بن گیا. یہ سب پری ریکوزٹس ہے ادخال کلمہ کے. تو دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ, یعنی جو دعوت کا کام کرے گا ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا. اور کئی جگہ ایدن الذین آمنوا و عادوا بهم, تو نصرت تائید مدد ہوگی دائی کی, دعوت کا کام کرنے والے کی. یہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے, حدیث میں بھی ہے. تو ادخال کلمہ کا کام جو ہے, جو کرنا ہے, اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس پہ اللہ کی سپورٹ شامل نہ ہو جائے. ایک طرف تو حالات پیدا ہو جائیں, لیکن صرف حالات پیدا ہونا بھی کافی نہیں ہے, اللہ کی نصرت اللہ کی تائید بھی لازمی ضروری ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ سب ہو چکا ہے, جو پری ریکوزٹس ہیں وہ سب ہو چکے ہیں, کوئی باقی نہیں ہے. اب تو صرف یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کو ہی نکال دے بس, یعنی قرآن کو چاہے پرنٹڈ فارم میں چاہے اس کے ذریعے کیا کہتے ہیں اس کو کمپیوٹر کے ذریعے
انٹرنیٹ
پرنٹڈ فارم میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے, جسے ویب سائٹ میں آپ ڈال دیں تو ساری دنیا پہنچ گیا ہو پوٹینشلی. آج کے ہر گھر میں کمپیوٹر ہے, تو جہاں وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا قرآن سامنے آ جائے گا اس کے. لیکن قرآن کا من عربی کی قرآن نہیں, عربی قرآن ڈال دیں تب بھی آدمی جب سمجھے گا نہیں اس کو تو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, انٹرنیشنل لینگویج بھی درکار ہے. تو آپ غور کیجئے کہ انسان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بن گئی, انگریزی زبان, اور دنیا بھر کے جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سب انگریزی زبان جانتے ہیں. تو پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج اس طرح سے بنے, اس پہ قرآن آپ چھاپیں اور شاید انہیں پہنچ جائے گا. یہ بھی اس کی پری ریکوئسٹ میں شامل ہے. اب دیکھیے جو لوگ بھی اس کے لیے کھڑے ہوں گے ادخال کلمہ کے لیے, تو ان کے لیے ایک طرف سارے اسباب تیار ہو چکے ہیں, دوسری طرف اللہ کا فرشتے مدد کرنے کے تیار ہیں. اب صرف اٹھنے کی بات ہے, اٹھنے کی بات ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. تو ادخال کلمہ آخری رول ہے انسانی تاریخ کا, آخری ڈیوائن رول, آخری ریلیجس رول, آخری دعوی رول, دعوت اللہ کا آخری رول وہ ہے ادخال کلمہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب وہ معاملہ کہ ایک اور چیز جو اس کے لیے شرط تھی پری ریکوزٹ میں سے کہ مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہوں. اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 200 کنٹریز ہیں, تقریباً 200 کنٹریز ہیں, تو تقریباً ہر ملک میں مسلمان موجود ہے, ہر ملک میں. قرآن کو ماننے والے, قرآن کا عقیدہ رکھنے والے, قرآن کو خدا کی سچی کتاب سے ماننے والے یہ سب لوگ دنیا بھر میں ہیں, جس کو ہم کہیں کوئی ملک خالی نہیں ہے اس قرآن سے. اس قرآن کیا ہوئے, اس قرآن میں کہ مسلمانوں کا انٹریکشن ساری دنیا میں ہو رہا ہے, مسلمانوں کا اور دوسرے لوگوں کا انٹریکشن گلوبل لیول پر ہو رہا ہے, آفیسز میں, فیکٹریز میں, انسٹیٹیوشنز میں, سفر میں, ہوائی جہاز میں, ہر جگہ روزانہ ملین ملین لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں. ٹوریزم میں دیکھیے تو یہ ایک گلوبل جو آنا جانا لوگوں کا ہے اور مسلمان سارے دنیا میں پھیل گئے. تو اس کے بعد کیا ہوئی ہے کہ آخری حد تک ممکن ہو گیا. وہ کیسے, ہر آدمی اپنے بیگ میں قرآن رکھے, لٹریچر رکھے, اور کچھ بھی کرنا نہیں, آپ کو اسپیچ نہیں دینا ہے, آپ کتابیں لکھنا ہے, صرف اس کو حوالے کر دینا ہے. جسے مثال کے طور پر دیکھیے, ہمارے ایک ساتھی دلی سے بامبے جا رہے تھے ایئر انڈیا سے. اب وہ جب جہاز میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا لیڈر بیٹھا ہوا ہے, سینٹرل منسٹر. تو انہوں نے کیا کیا, وہ اپنی جیب میں ہمیشہ رکھتے ہیں اسلامی لٹریچر, تو ایک کتاب ہے جو ہمارے چھپی ہے, ریئلٹی آف لائف. انہوں نے جیب سے کتاب نکالی اور کہا, سر دس از فار یور ان فلائٹ ریڈنگ. فوراً اسے شکریہ کے ساتھ لیا اور پڑھنے لگا. ہر جگہ آپ کو سفر میں, آفس میں, انڈسٹری میں, ورک پلیس میں, جہاں بھی آپ ہیں ساری دنیا میں, جب آپ کسی ملاقات ہو تو آپ ان کو کوئی اسلامی کتاب دے دیجیے, قرآن کا چھپا ہوا ترجمہ دے دیجیے. یہ ہے اتخال کلمہ. اتخال کلمہ کا مطلب کوئی مسٹیریس نہیں, اتخال کلمہ کوئی مسٹیریس پروسیس نہیں, مسٹیریس پروسیس نہیں ہے, بلکہ ایک معلوم پروسیس ہے. آپ میل کے ذریعے سے دستی طور پر بہت سے طریقے اس زمانے میں ہیں کمیونیکیشن کے, ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ کیجیے. اچھا یہ جو ہے دیکھیے, یہ صحابہ اکرام نے کیا تھا. دیکھیے صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ پرنٹ میڈیا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا تھا, اس وقت نیچرل میڈیا تھا. نیچرل میڈیا یعنی میموری. تو کیا کرتے تھے, وہ قرآن جو اترا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو انہوں نے یاد کر لیا. یاد کر کے اس بعد جانے جہاں گئے وہاں گئے, تو وہ کیا کرتے تھے اس کو پڑھ کر سناتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا. یہ نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں کہ ڈاؤن لوڈ کرو تو اسے مل جائے گا تم کو, یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں. تو ان کو کہا جاتا تھا مقری. مقری معنی ہوتے ہیں پڑھ کر سنانے والا, ریڈر. وہی آپ کو بننا ہے, صرف اتنے فرق کے ساتھ کہ آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیں. چھپا ہوا مٹیریل جو ہے اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کو دیتے رہیں, وہ بنے تھے مقری ریڈر. آپ بن جائیں ڈسٹریبیوٹر, بس اس سے اور کچھ نہیں. اور پھر سارے عالم میں گھر گھر قرآن اور اسلامی کتاب پہنچ جائے. ادخال کلمہ ایک فطری پروسیس ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے, ایک معلوم پروسیس ہے. सिर्फ जरूरत किस बात की है कि मुसलमान जो है दावा कॉन्शियस हो जाए, शोर या दावत उनके अंदर पैदा हो जाए, दावत का शोर, दावत का शोर पैदा हो जाए, बस और कुछ नहीं, सब कुछ सामान तैयार है, सारा सामान तैयार है। कभी जिस चीज का है वो दावत का शोर, दावा कॉन्शियस हो जाए मुसलमान, बस। और फिर वो वन माइंड टू मिशन बन जाए। एक मिशन तो ये है कि वो अपना लाइवलीहुड हासिल करते हैं, अपने फैमिली की जरूरत पूरी करते हैं, कोई इंडस्ट्री कोई जॉब चलाते हैं, एक उनका ये है। साथ साथ ये है कि दावा मिशन को शामिल कर लें कि जहां जाएं वो तो बस उनको कुरान दे दें, किताब दे दें। अगर बिलफर्ज उनको स्पीकिंग पावर है, उनको मौका है, तो बातचीत करके पहुंचाएं, डायलॉग करें। मतलब जिन लोगों के अंदर ताकत है बोलने की लिखने की, तो उस ताकत को इस्तेमाल करके वो इस्लाम को फैला सकते हैं। जो बिजी हैं, जिनको इसके मौके नहीं है, तो उनके पास प्रिंटेड मटेरियल रहना चाहिए हर वक्त पॉकेट में, बैग में। तो ये इत्थाल कलमा जो है एक वेल नोन प्रोसेस है, वो कोई पुरसार प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि लोगों के अंदर दावत का शूर पैदा किया जाए और इस जिम्मेदारी का शूर पैदा किया जाए। उनको यह बताया जाए कि आखिरी बड़ा रोल होता है, उससे पहले एक मुकद्दर है, तुम उसमें हिस्सेदार बनो, उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाओ। नहीं, ऑलरेडी ये प्रोसेस जारी है और ये सेकुलर लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब भी इतने बड़े बड़े पब्लिशर हैं, बड़े बड़े पब्लिशर, वो कुरान छाप रखा हुआ है, कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन, बड़े बड़े पब्लिशर, इंटरनेशनल पब्लिशर्स, तो उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे वो। तो इत्थाल कलमा का एक प्रोसेस ऑलरेडी जारी है, ऑलरेडी उसमें मुसलमान भी शरीक है और सेकुलर लोग भी शरीक है उसमें। हमारी आपकी सआदत यह है कि हम उसका पार्ट बन जाए, उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाए, बस यही है, ताकि आखिरत में मरने के बाद हमारा नाम उन लोगों में लिखा जाए जो इस प्रोसेस में शरीक हुए। वहां पर हदीस में आता है कि वहां पर लोग कैटेगरी अलग अलग की जाएगी, कैटेगराइजेशन किया जाएगा वहां। तो गालिबन एक कैटेगरी उन लोग होगी जिन्होंने इत्थाल कलमा का काम किया। वहां पुकारा जाएगा कि देखो वो लोग जिन्होंने इत्थाल कलमा का काम किया था, वो इधर आ जाए। तो कितना बड़ा एक, कितनी बड़ी खुशकिस्मती आपका इंतजार कर रही है, कितनी बड़ी खुशकिस्मती कि तारीख इंसानी का वो रोल जिसको हदीस में इत्थाल कलमा कहा गया था, वो रोल अदा करने के सारे हालात पैदा हो चुके हैं, सारे अपॉर्चुनिटीज वजूद आ चुकी है। अब सिर्फ उस प्रोसेस का एक हिस्सा बनना है बस, और कोई रुकावट नहीं। हदीस में आता है कि एक जमाना था कि अगर आदमी कहता था कि अल्लाह एक है और बुतप्रस्ती गलत है, शिर्क गलत है, तो उसको ऐसा किया जाता था कि जमीन में गाड़ करके उसके सर पर आरा किया था, आरा, और दोनों थोड़ा थोड़ा हो जाए, हदीस में आता है। तो फिर साहबा की जुबान से दुआ सिखाई गई कि रब्बना बला तहमिल अलैना इसरन कमा हमल तो अरे लदीज मैंने कब लेना, اس میں بقرہ بھی ہے. تو پیغمبر نے دعا کی, صحابہ نے دعا کی, یعنی اے اللہ تو ہمارے اوپر اور بعد کے مسلم نسلوں کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو پچھلوں پر تھا. یعنی آرے سے چروا کر کے کلمہ حق کہنا, آپ دیکھیے کہ فرعون کی بیوی تھی آسیہ, اسے صرف یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں, صرف اتنا کہا تھا اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے, کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں. اس کو فرعون نے پتہ کروا دیا. تو وہ دعا جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سورہ بقرہ میں آئی اور صحابہ کرام نے جو یہ دعا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, خدا ہمارے لیے دعوت کے کام کو آسان کر دے, ہمارے لیے ہم کو اس سے بچا کہ ہم اس سخت آزمائش میں پڑھ کر کے دعوتی کام کرنا پڑے ہم کو. تو وہ ہو گیا, اب تو کوئی پکڑ نہیں, کوئی ظلم نہیں, آپ دعوتی کام کریں تو کوئی آپ کی پکڑ نہیں. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بڑی تھی یونائٹیڈ نیشنز, جس کا ہیڈ کوارٹر آپ کے نیو یارک میں ہے. دنیا کی تمام کنٹریز, تمام نیشنز نے اس میں اس کی ممبر ہیں, اس کی ممبر ہیں. اور وہاں پر جو ان کا وہ ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس, سب نے اس پہ سائن کیا ہے. اس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ جس مذہب کو چاہے فالو کرے, جس مذہب کو چاہے پریکٹس کرے, اور جس مذہب کی چاہے وہ پبلسٹی کرے. یہ بھی ہے دعوت اور تبلیغ کے کام کی بھی آزادی. تو ساری دنیا کے قوموں نے دستخط کیا اس کے اوپر. ہم اس دور میں ہیں, اس دور میں ہیں کہ آزادی آپ کا حق ہے, صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ وائلنس نہ کریں, ہارمفل نہ بنیں لوگوں کے لیے. جب تک آپ وائلنس نہیں کرتے, جب تک آپ ہارمفل نہیں بنتے, تب تک آپ کو ابسلوٹ آزادی حاصل ہے. ابسلوٹ آزادی, کوئی روکنے والا نہیں آپ. یہ اب جو نارم ہے, جس نارم پر دنیا کا نظام چل رہا ہے جوائنشن کے ذریعے سے, اس میں ایک ہی چیز ہے جو جس کی اجازت نہیں, وہ ہے تشدد, وائلنس. تو اس تو کتنا عجیب ہے زمانہ کہ اگر آپ وائلنس نہ کریں تو اتفاق کلمہ صاحب نے ہم کرتے رہے, کوئی پکڑنے والا نہیں آپ کو. ہر آدمی شکریہ کے ساتھ قبول کرے گا آپ کو. ہمارے ساتھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ دس از اسپرچل گفٹ فار یو, یہ آپ کے لیے ایک اسپرچل تحفہ ہے. وہ بڑے شوق سے قبول کرتا ہے. وہ تو ایک نئی دنیا ہے, نئی دنیا ہے, نئی دنیا ہے. تو سارا جو اٹکا ہوا جہاں معاملہ, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دعوت کا شعور پیدا کیا جائے. دعوت کا شعور بٹ آلریڈی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ یعنی حدیث میں یہ تھا کہ ہر گھر میں اللہ کا کلام داخل ہو جائے, تو ہر گھر کے پڑوس میں مسلمان موجود ہیں. کیسی عجیب بات ہے, مسلمان ہر گھر کے پڑوس میں موجود ہے, ساری دنیا کے پڑوسی بن گئے ہیں. کتنا آسان ہو گیا. یعنی آپ دنیا والوں کے پڑوسی ہیں. پہلے ایسا کہا تھا یونیورسل نیبرہڈ جو ہے, یہ پہلے کہا تھی یونیورسل نیبرہڈ, تو یہ بالکل آج کی چیز ہے. تو مسلمان انجوائے کر رہے ہیں کیسے دور کو جبکہ دنیا میں یونیورسل ڈیولپمنٹ آ چکی ہو. تو آپ پھیلائیے, जो भी जरिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी जरिया है, वो सब आपके कब्जे में है। पीसफुल तरीके से आप उसको इस्तेमाल करें तो कोई पकड़ वाला नहीं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा काम यह है कि लोगों के अंदर दावत का शूर पैदा किया जाए, उनको बताया जाए कि कितना बड़ा एक रोल वाले मुकद्दर है इत्फाले कलमा, जो आखिरत में मरने के बाद अल्लाह ताला के हाथ को एक बहुत बड़ी इज्जत देने वाला है। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझ और आपको इस प्रोसेस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए और इत्फाले कलमा का क्रेडिट हमें दिया जाए आखिरत में। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करे। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अपने लिए और आपके लिए। अकूल कौल हाजा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम अजमईन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद मीर है। मौलाना पूछना था कि साइकिक के पास जाना, जैसे लोग जाते हैं किसी मौलवी के पास, किसी साइकिक के पास जाके कहते हैं कि क्या किया जाए, इसके बारे में क्या इस्लाम का हुक्म है?
मैं समझता हूँ जायज़ है, इसमें कोई नाजायज की बात नहीं है। मैं प्रोफेशनल साइकिटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं काउंसिल करता हूँ खुद भी।
बताते हैं कौन दुश्मन है, कौन जादू कर रहा है, कौन तावीज कर रहा है।
वो तो इस्लाम में जायज नहीं है, क्योंकि कोई इंसान जानता नहीं। तो ये जो बातें करते हैं वो इल्म नूम की मदद से करते हैं, वो तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में हर वो चीज़ है जो फैक्ट पर बेस करती हो, जो गेस पर बेस करती हो, वो इस्लाम में होगी।
मां साहब, आपने फरमाया कि साइंटिस्ट जो है इस वर्ष पे है कि क़यामत नज़दीक है, तो इस्लामिक व्यू क़यामत क्या है, उसके अलामात शुरू हो गए हैं या हमारे लिहाज से अब क़यामत कितनी दूर है, क्योंकि अभी तक दज्जाल तो हमने देखे नहीं या सुना नहीं, और मेरी असलम के बाद भी नहीं पता, और उसके बाद ईसा अलैहि सलाम को भी आना है, तो उन सब चीज़ों में तो वक्त लगेगा।
देखिए, ये बात जाहिर है कि कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी, क्योंकि तो कुरान में है कि ला यातीकुम इल्ला बग्ता, क़यामत अचानक आएगी। इस बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो गेस होगा, गेस, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला को है। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साइंसदान जो है फैक्ट्स की स्टडी करता है, कोई साइंसदान कोई नावलिस नहीं होता है। तो उन्होंने स्टे करके बताया कि जो पानी के जखीरे बड़े बड़े हैं वो पिघल पिघल करके बहकर समुद्र में जा रहे हैं, ग्लोबल जो कार्बन एमिशन इतना बढ़ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, वगैरह वगैरह, हवानात बढ़ रहे हैं। तो आखिर कैसे इंसान जाएगा इसको? लेकिन हमें शुतुरमुर्ग तो हम ऑस्ट्रिच हाइब्रिड तो डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, ऑस्ट्रिच लाइक जिंदगी नहीं जा सकते। कैसे ऐसा होगा जब आप जानते हैं कि जो पानी के बड़ बड़े जखीरे हैं जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर पहाड़ों पर जो है वो बाकायदा उसकी तस्वीरें आती रहती हैं कि पिघल पिघल कर बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, उससे समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है, कार्बन एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सब हदीस में भी ये सब बातें हैं कि गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, समुद्र का लेवल बहुत ऊँचा हो जाएगा। तो अब ये साइंटिफिक हकीकतों को हम कैसे इनकार करेंगे, कैसे इनकार कर सकते हैं? बहुत सी दिखी, बहुत से एनिमल जो बच चुके हैं ऑलरेडी, उनका वजूद नहीं है, जैसे मैं दिल्ली में आया 1967 में, तो मेरे घर पर गौरिया कहते थे, क्या कहते हैं वो स्पैरो झुंड के झुंड आते थे, अब स्पैरो दिखाई नहीं देते। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। तो फिजा में पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका, पानी का लेवल बहुत बढ़ गया, समुद्रों के बारे में देखिए रिपोर्ट आई है कि 95% समुद्र प्लूट हो चुका है, 95% समुद्र पानी प्लूट हो चुका है। तो ये साइंसदान बता रहे हैं, ये तो फैक्ट बता रहे हैं, ये कोई नावल निवारी तो नहीं कर रहे। वो तो कहाँ रहेगा इंसान। तो हमें, मैं इसलिए कहता हूं कि मुझको आप किसी इल्म है, लेकिन हमें बहुत कॉशस होना पड़ेगा। जैसे साहब इकराम का मामला देखिए था कि अगर आधी आती थी आधी तो दौड़ते थे मस्जिद तरफ के साथ तामत आ गई। तो साहब इकराम का यह हाल था कि आधी आने पर दौड़ते थे तामत आ गई शायद। तो उसी सुन्नत की आदा हमें करना है कि इस तरह की बातों पर हमें अल्लाह को याद करें और अल्लाह से दुआएं मांगें, तामत करीब तो नहीं आ गई। ये किताब में लिखा हुआ पढ़ लीजिए आप कि मदीने में जब मस्जिद नबी बनी तो सख्त आंधी आए तो लोग भाग मस्जिद में, शायद क्यामत आ गई। तो यह बातें कहना जो है ऐन सुन्नत नबवी है, अनित सुन्नत साहब है।
नहीं, वो तो मैं आपकी बात साइंटिफिकली मानता हूं, समझ रहा हूं, लेकिन इस्लामिक व्यू के लिहाज से
देखिए क्रास क्वेश्चन ना करें तो अच्छा रहेगा, अलग अलग सवाल, एक सवाल एक जवाब। अगर ज्यादा सारा है तो आप मुझे ईमेल भेजें, बाई पोस्ट या ईमेल से, मैं उसका जवाब दे दूंगा। यहाँ बातचीत नहीं सकती, ये डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग नहीं, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक आंसर।
नहीं, एक सवाल है, ज़्यादातर हम लोग के जब रमज़ान का ज़माना आता है तो चांद देखते हैं, तो चांद कब न्यू मून होता है आजकल साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट किया जा सकता है एग्जैक्टली किस दिन नया मून होगा। तो ये है कि कोई पहले ज़माने में चांद देखते थे उसके बाद रमज़ान या ईद करते थे, अगर बदली है, अगर साइंटिफिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस दिन है, तो इस्लाम में क्या है कि बगैर चांद देखे हुए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चांद निकल गया, अगर साइंटिफिकली आप कैलकुलेट कर लें तो।
हाँ देखिए, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। आमतौर पर जो इंडियन सब पांडे उलमा है वो समझते हैं कि आँख से देख कर ही हो सकता है, क्योंकि हदीस आता है कि वो जब चांद देखो तो रोजा रखो, सोमू डरू गई थी वक्त डरू गई थी। लेकिन सऊदी अरब के उलमा ने फतवा दे दिया है और वहां पर आप जानते हैं कि अल मरसूद इस्लामी बनी है, यानी इस्लामिक ऑब्जर्वेटरी सऊदी अरब में अल मरसूद इस्लामी, चुनाचा सऊदी अरब में पेश के ऐलान कर दिया था, अभी ये चीज हो चुकी है वहां पर, ये बकरीद का ऐलान पेश किया गया था उसी के मुताबिक। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उलमा तो अभी तक उसी पर कायम है कि सोमो डरी हुई थी वक्त हुई थी, लेकिन सऊदी अरब उलमा फतवा दे चुके हैं। ज्यादातर मेरी राय यह है कि बिल्कुल जायज है कि आप जो ऑब्जर्वेटरी के जो फाइंडिंग है उस पर आप ये करें, क्योंकि ये बात बिल्कुल साबित है एस्ट्रोनॉमिकली कि चांद का होना ठीक ठीक सेकंड मिनट सेकंड बात मालूम हो जाता है। चांद का होना क्या है, किस तरीके का हम प्राप्त होना करते हैं, हमारी जमीन से 8 डिग्री अगर चांद नीचे हो तो दिखाई नहीं देगा, वो नहीं 8 डिग्री ऊपर होने दिखाई देगा, नीचे हो दिखाई देगा। तो वो हर 29 तारीख को चांद लाजमन हो जाता है, सिर्फ यह कि दिखाई नहीं देता, कभी कभी दिखाई देता है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ऑब्जर्वेटरी के जो कहते हैं अल्बर्ट उसकी फाइंडिंग के मुताबिक रोजा रखा जाए, ईद की जाए, मैं जाए तो इसको जायज समझता हूँ। जैसा सौदर पलमा जायज कह चुके हैं इसको, तो मुश्किल ये कि दूसरा जो अलमा है अभी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो यह अभी कंट्रोवर्सी चल रही है।
Maulana sahab, I want to ask you a question, that what role ladies can play in the distribution of the Quran or in the role of Idkhal Kalima?
Main samajhta hoon ki ladies ka role number ek hai. Dekhiye, Hazrat Hajra jo role ada kiya, main samajhta hoon ki wo role tareekh mein mardon ne bhi ada nahi kiya. हताशा का रोल बहुत बड़ा था, उनके बारे में जो किताब है आप पढ़िए, मौलाना सैयद साहब ने ली की सैयद आयशा, खुद माने भी लिखा है, तो बहुत बड़ा रोल था उनका। अच्छा, लेडीज के बारे में देखिए, इस जमाने में एक बहुत बड़ा फेवरेबल बात हमारे लिए है कि लेडीज फर्स्ट कौंसुल दुनिया में राज हो गया है, जो पहले कभी नहीं था। हम जाते हैं जहां जहां, तो हमारे साथ ख्वातीन भी होती हैं और मर्द भी होते हैं। मर्दों के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि ख्वातीन जाती है लोग फौरन रास्ता दे देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं पोलैंड गया हमारे कई साथियों के साथ, वहाँ क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस थी, तो अब जहाँ भी जाते हैं तो कुरान छपा हुआ ले जाते हैं वहाँ पर। तो वो ईसाइयों के बड़े बड़े वो जो उनके अहदेदार हैं, बड़े बड़े फादर वगैरह, वो वहाँ थे, उनकी सीट लगी हुई थी, वहाँ बैठी हुई थी। तो हमारे साथी ने कुरान डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता वहाँ, चाह वहाँ पर जो सब क्रिश्चियन क्रिश्चियन थे, तो भय उसके साथ ने कहा ये क्या, ये गुस्से के अंदाज में लॉर्ड फादर ये था। तो हमारी जो ग्रैंड डॉटर है सादिया, वो गई उसके सामने, सिर्फ सर झुका दिया, सर झुका कहा कि ब्लेस मी फादर, ब्लेस मी फादर, इतना कहते हुए दर्द बढ़ गया। वो सर कहते ओके ओके जाओ करो करो, और खूब डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने। ऐसे दिल्ली में देखिए, एक जलसा था, सब हिंदू हिंदू थे, उसमें एक बार लीडर आया हुआ था, बैठ जाते हैं स्टेज पर, बोलेंगे तो चले चले जाते हैं, बैठते नहीं देते। तो एक लीडर आया, उसने स्टेज पर तकरीर की, उसे वो जाने लगा। वो तो हम लोगों को मौका मिलता है जब जैसा ख़त्म हो या शुरू में, वो बीच में जाने लगा, वो अब क्या करें हम लोग। तो वही हमारी जो डॉक्टर साथ दिया, वो दौड़ी एक्सक्यूज में सर, एक मर्द इस तरह नहीं कर सकता, लेकिन लेडीज को वो खास मौका देते हैं। तो जब उनका एक्सक्यूज में से एक्सक्यूज था, तो खड़ा हो गया, जाकर उसे कुरान दिया उसको। तो मैं समझता हूं कि हमें जमाने के स्पिरिट को इस्तेमाल करना चाहिए। ये जमाने की स्पिरिट है कि लेडीज फर्स्ट वाला, तो हमें उसकी इस्तेमाल करना चाहिए। हम जाहिर तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जहां भी जाते हैं खवातीन के जरिए से हमें मौका मिल जाता है, खुश जाते हैं, खूब पहुंचाते हैं कुरान हर जगह। मैं जाहिर तौर पर समझता हूं कि इस मामले में हमें स्पिरिट ऑफ द एज को समझना चाहिए और ख्वातीन को दावत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
Any more questions?
मौलाना, ये होता है कि कोई बुरी नजर लग जाती है या उसकी वजह से कोई बीमार हो सकता है या हसद की वजह से बीमार हो सकता है?
हाँ देखिए, ये मसला बहुत ही नाजुक है। हदीस में चूंकि आया है इसलिए मानना पड़ता है। मैं ज्यादातर बहुत ही रैशनलिस्ट आदमी हूँ, बहुत ज्यादा रैशनलिस्ट, लेकिन बुखारी में रवायत है अलैन हक पन, नजर लगना पर हक, ये नजर लगती है तो इसलिए हम मानेंगे कि नजर लगती है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि नजर लगती है, जो बहुत हसद वाले लोग होते हैं, बहुत जेलस, उनकी नजर लगती है। तो ये अगर ये हदीस ना होता, अगर हदीस ना होती तो शायद मैं शक करता, लेकिन जब हदीस मौजूद है तो मैं उसको मानता हूं और उसको मैं इससे एक्सप्लेन करता हूं कि हसद और जलन जो है वो बहुत ही ज्यादा उसमें नेगेटिव मिजाज बन जाता है और आंख पर असर रहता है उसका। तो बहुत गड़ा कर देखा होता है, गड़ा कर देखा, जब बहुत गड़ा कर जब देखा अच्छा इनको ये तरक्की हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसका असर ही हो उसका, ऐसा नहीं है कर, लेकिन असर हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि इस हदीस के बिना पर कि जिसको कहते हैं हसद वाली नजर, जिसके अंदर हो, सब में हसद नहीं होता है, कुछ लोग होता है हसद, तो उनके अंदर नजर लग सकती है, लाजमा लग जाएगी, ये मैं नहीं मानता कि लग सकती है।
मौलाना, वंस यू आर टॉकिंग अबाउट दैट देर आर मेनी लेवल्स इन पैराडाइज, सो हाउ कैन वन अटेन द हाईएस्ट लेवल इन पैराडाइज? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट।
जैसे कि जहां तक मैंने समझा है, देखिए हदीस में आता है कि 100 दर्जे हैं जन्नत के, 100 दर्जे। तो जहां तक मैं समझा है, जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो नबियों के लिए और दाइयों के लिए, सबसे ऊंचा दर्जा नबी का दाई होता है। तो नबी की पैरवी जो करे उसी बारे में दाई बन जाए जैसा कि नबी बना, उनके लिए है वो। लेकिन दाई बनने का मतलब यह नहीं कि अनाउंस करना, अनाउंस कर दे आप और कोई प्रोफेशनल तौर पर कुछ कर दे आप, नहीं। दाई के लिए देखिए कुरान में दो सिफत बताई गई है, इन्नी लकुम नासिर अमीन, एक है बहुत ज्यादा खैरखा होना, इन मधु का बहुत ज्यादा खैरखा होना। खैरखाई की पहचान यह है आपके अंदर मधु फ्रेंडली बिहेवियर पैदा हो जाए, यानी यूनिलैटरल तौर पर आप उससे उसके खरखा हो, चाहे वो जुल्म करें, चाहे वो सताएं, चाहे आप खराब साजिश करें, क्योंकि कोई भी हो फिर भी आप उनके बेविषय बने रहे, तब वो दावत होती है जो पगोबर पगोबर वाली दावत। सिंपली अनाउंस करना ये दावत नहीं है उस दर्जे की। तो पैगंबर का देखिए कि एक बार ऐसा हुआ कि जंग के मौके पर दुश्मनों ने पत्थर मारा, रसूल साहब दास शहीद हो गया, खून बहने लगा, ब्लीडिंग हुई। उस वक्त आप विद्वान से निकल गया कि वो कौम कैसे फुला पाएगी जो अपने नबी को लोहलुहान करे। तो फौरन अल्लाह ने फरिश्ता भेजा कि तुमको एक तारीख आप नहीं, क्योंकि इसमें बद्दुआ का टोन था। तो फौरन आपने अपनी जुबान बदल दी, आपने फरमाया कि रब्बे द कौमी फैनहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम हिदायत दे, वो जानते नहीं। ये दिल चाहिए, ऊंची वाली जन्नत पानी चाहिए, ये दिल चाहिए, कि बहुत ज्यादा वेलविशिंग, बहुत ज्यादा खैरखाई, नफरत खत्म, हेट खत्म, गुस्सा खत्म, तब जाकर के वो दवाई बनेगी आपके, आप बेचैन हो जाए, आप दवा करें उनके लिए तन्हाइयों में, उनके उनके लिए दुआ करें, उनके लिए बेचैन हो जाए, उनके लिए सारी तदबीरें करें। तो पैगंबर वाले अंदाज में दावत का काम करना, मैं सकता हूं यही वो चीज है जो आदमी को ऊंचे दर्जे की जन्नत में पहुंचाएगा।
सवाल है वालदैन के हकूक के ऊपर, कि वालदैन का कितना हकूक होता है, अगर एक इंसान के वालदैन जिंदा हैं, बूढ़े हैं, तो उनकी खिदमत में अगर और बाकी चीज़ों में कमी आ जाती है, तो किस हद तक यह है कि वालदैन की खिदमत करना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा उनके हकूक हैं, इसके बारे में आप कुछ कहें।
देखिए ये सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि आजकल तो यह है लोगों ने वालदैन को बुत बना रखा है, बच्चों को बुत बना रखा है, तो बहुत मुश्किल है। मेरी बात इस बात किसी को पसंद नहीं आई। अभी मैं कहीं से कह रहा था आज ही कि जो ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है, ह्यूमनिज्म, उसके बारे में कहता है कि उसका फार्मूला है ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम गॉड टू मैन, ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम गॉड टू मैन। इस जमाने में क्या हुआ है, पहले भी हुआ था, इन सबसे बड़ी दुनिया में गुमराही हुई वही हुई है, ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम गॉड टू नेचर, ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम गॉड टू किंग। आपका है ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम गॉड टू फैमिली, ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम गॉड टू चिल्ड्रन, आज ही मैं कर रहा था। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज है। मैं समझता हूं कि वालदैन का सिर्फ इतना हक है, बस हकीकी जरूरत उनकी पूरी ना हो तो आप पूरी करें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट सेंस में कोई उनकी हमारी हमारे हक आता उनका। हिंदुओं में जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया है, हिंदुओं में वालदैन को माबूद का दर्जा दे रखा है, वो हिंदू कॉन्सेप्ट हमारे आ गया है। और उसके लिए क्या होता है कि सारा पैसा वो खर्च करते हैं अपनी फैमिली पर और दीन के लिए उसके बाद कुछ नहीं रहते। मैं इसको गलत समझता हूं। वालदैन अगर हकीकी वाले जरूरतमंद हो तो आप उनकी पूरी कीजिए, बाकी ये कि सारा ओरिएंटेशन उनकी तरफ हो जाए, बच्चों की तरफ, फैमिली की तरफ हो जाए, पर आपके पास दिन के लिए कुछ ना रहे, ना टाइम रहे, ना पैसा रहे, ना एनर्जी रहे, तो इसको मैं सही नहीं समझता। कुरान में कहीं ऐसा नहीं है। आजकल जो जिस तरीके से लोग करते हैं बच्चे, फैमिली, बाप, कुरान में कहीं इसके बारे में नहीं। ये लोगों का अपना बनाया हुआ दीन।
सवाल मेरी तरफ से है, ईसा अलैहि सलाम ने कहा था कि जो है आपके गाल, एक गाल पे किसी ने तमाचा मारा तो आप दूसरा गाल पेश कीजिए, और इस्लाम में कुरान में एक तालीम यह है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, तो यह क्या दोनों में तजाद है या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
देखिए दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, वो अलग है, वो अलग है। हदीसा की तालीम इस्लाम, इस्लामी तालीम। देखिए आंख के बदले आंख जो है वो उसका तो क्रिमिनोलॉजिस्ट है, एक क्राइम किसी ने किया, किसी का आंख फोड़ डाली तो उसकी सजा क्या है वो बताया गया वहां, वो मर्डर ऑफ क्राइम है वो। और वो जो कहा हदीसा ने, वो एक और है कि तुम्हारा कोई कुर्ता मांगे कोट मांगे कुर्ता भी दे दो, वो है दाई का अखलाक, वो तमसील की जबान में, ऐसा कभी भी नहीं किसी ने किया, कुदरत मसीह ने भी ऐसा नहीं किया, किसी ने इधर मार इधर पेश कर दिया। लिटरल सेंस में नहीं है वो, तमसील के रूप में है। यानी दाई को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अदर देन दावा किसी और चीज को कंट्रोवर्सी का मौजू बनाए, सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। और यह है इस्लाम में, देखिये सुजासरण के साहबा में एक साहब थे, उनका नाम था सहेब रूमी मक्का में। तो सहेब रूमी जो थे मक्का में, वो लोहारी के काम करते थे, कुछ पैसा उन्होंने कमाया था, कुछ दीनार कमाए थे। तो जब सुजासरण की हिजरत हुई, आप मदीना चले गए, तो आपके जाने के कुछ दिन बाद वो भी मक्का से मदीना जाने लगे। जब मदीना के बाहर निकले तो वो मक्का से बाहर निकले तो मक्का के लड़कों ने उन्हें घेरा और कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो कहा क्या क्यों? कहा आपने मक्का में पैसा कमाया है, ये दीनार कमाया है, उसको लेकर आप मदीना जा रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। तो हजरत सहेब ने कहा कि अगर मैं ये दीनार तुमको दे दूं, क्या जाने लोगे उसको? कहा तो उन्होंने वो दीनार निकाल के दे दिया, अंदर रखा हुआ था, दे दिया। अच्छा, उसके बाद वो मदीना पहुंचे, रसूलुल्लाह से मालूम हुआ कैसा वाकया पेश आया है। दरअसल ये नहीं कहा कि लड़का मर जाते तो कैसे तुमने ऐसा किया, दीनार दे दिया उनको, नहीं, आपने फरमाया रबिया सहेब रबिया सहेब। दो रवायतें हैं, देखिए एक ये लफ्ज है रबिया सहेब, एक है कि रबेल बे हो जा अबाया जा, रबेल बे हो जा अबाया जा। यानी सुहेब की तजारत बहुत कामयाब रही, सुहेब की तजारत बहुत कामयाब रही, यानी दीनार लेकर अपने आप को बचा लिया, दीनार देकर अपने आप को बचा लिया। बचाने के माने क्या है? एक दाई ने अपने आप को बचा लिया, उन्होंने अभी दावत करोड़ अदा करना था मक्का से मदीना पहुंच करके इस्लाम को फैलाना था, तो खाम का आप को मरवा ले दीनार के बदले, तो दीनार दे करके अपने को बचा लिया, वहां गए दावती काम किया और फिर वो साहबा के जो दर्द हिस्सा बन गए। तो मैं समझता हूँ हज बसी का जो है तमसील के दुवान में है, वो दाई का अखलाक है वो ठीक वही इस्लाम में भी है।
सवाल पे एक मैं कमेंट करूँ आपके साथ, वो ये कि उसके बाद इजाजत मांगता हूँ, वो जो आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर ए टूथ, वो जो एग्जैक्ट कोटेशन है दैट्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट से है वो, और न्यू टेस्टामेंट में इस तरह है कि जीसस इज सपोज्ड टू हैव सेड कि यू हैव बीन टॉट आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर ए टूथ बट आई टीच यू टर्न द अदर चीक, सो द ओरिजिनल कोटेशन इज फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट। See, bilkul. But it's also present in the Old Testament. Just for your information. Okay. And Jesus has actually said, according to the New Testament, okay, you have been taught eye for an eye and tooth for a tooth. But I teach you, turn the other cheek. I have taught you, mark it.
No, look, the two contexts are different. Sorry, that's right, that's right. Look, bilkul. Old Testament, that's right. That's right. निंदा ने बताया, दाई अखलाक बताया, तो वो अपनी कब से, वो अपनी कब से ही, यानी वो यहूदी शरीयत के तहत आया है, वो ओल्ड टेस्टामेंट का यहूदी शरीयत यही था, हमारा भी ये इस्लाम में भी कसास का उसूल। तो जहाँ क्राइम हो, क्राइम तो वहाँ वही होगा हमारे यहाँ भी। बाहर बसी ने जो कहा तो वो असल बसी लाद शरीयत देने नहीं आए थे, वो सिर्फ दावत उनकी हाथ थी, तो दावत के उसूल क्या मिलते हैं, बस जो उन्होंने कहा मसीह ने, वो दावत का उसूल है, और जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो कानून का उसूल है।
तो हम वैसे वाइंड अप करते हैं, आप सबका शुक्रिया। यहाँ ब्रोशर्स हैं और हमारे पास कुरान अवेलेबल है, तो अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो मुझसे
رابطہ قائم کریں. السلام
علیکم.
جی جی.